नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एयर इंडिया के प्रमुख कैंप बेल विल्सन ने सोमवार को कहा कि परिचालन कर्मियों की कमी की वजह से विमानन कंपनी को अमेरिका में कुछ मार्गों पर अपने विमानों के फेरे अस्थायी तौर पर घटाने पड़ेंगे। कापा इंडिया सम्मेलन में एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं CEO विल्सन ने बताया कि इनमें नेवाक जाने वाली 3 और सैन फ्रांसिस्को जाने वाली 3 उड़ानों समेत अमेरिका की 6 साप्ताहिक उड़ानें घटाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बोइंग 777 उड़ाने के लिए 100 पायलट को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा परिचालक दल के करीब 1400 कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। चालक दल के सदस्यों की कमी के कारण हाल ही के महीनों में लंबी दूरी की कुछ उड़ानें प्रभावित हुई। विमानन कंपनी स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह ने सोमवार को कहा कि कंपनी अपने बही खाते को पुनर्गठित कर रही है और वो आक्रामक तरीके से बेड़े के विस्तार के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास ढुलाई के लिए भी उल्लेखनीय संख्या में विमान है। उन्होंने कहा कि कंपनी कार्गो कारोबार की मदद से ही अपनी देनदारियां चुका पाई है। एयरलाइन कंपनी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स बकाए को बदलते हुए एयरलाइन में 7.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा वो कार्गो कारोबार में भी हिस्सेदारी लेगी। इसके अलावा स्पाइसजेट का इरादा पात्र संस्थागत नियोजन मार्ग से 2500 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने बही खाते को महत्वपूर्ण ढंग से दोबारा तैयार कर रही है और नई पूंजी जुटाएगी। बेड़े में विस्तार पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोइंग 737 मैक्स विमानों को उड़ान से प्रतिबंधित करना कोविड से बड़ी त्रासदी थी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पहल के कारण स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकती है। अमेरिका के एक शीर्ष शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बड़े विस्तार से आयात में अरबों डॉलर की बचत होती है। सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास केंद्र लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरीज ने द इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया है। भारत अपने कच्चे तेल और कोयले की 80-85% जरूरत आयात से पूरा करता है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में इनकी कीमत और आपूर्ति में उतार चढ़ाव के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। तमिलनाडु सरकार ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया। उसने कहा कि सुधार पहलों के चलते राज्य के राजस्व घाटे में कमी आई है और ये 62,000 करोड़ रुपये से घटकर 30,000 करोड़ रुपये रह गया है। राजन के बजट भाषण शुरू करने से पहले मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने सदन में हंगामा किया। राज्य के वित्त मंत्री पलानी वेल थियागा राजन ने बजट पेश करते हुए कहा कि कठिन और अभूतपूर्व सुधारों की वजह से वार्षिक राजस्व घाटा 62,000 करोड़ रुपए से घटकर चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में करीब 30,000 करोड़ रुपये रह गया है। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में बड़े पैमाने की अनेक कल्याण योजनाएं चलाई गई, जिसके बावजूद राजस्व घाटे में कमी आई है। वित्त मंत्री ने बजट में चेन्नई में आधुनिक वैश्विक स्पोर्ट्स सिटी बसाने की डॉक्टर B.R. अंबेडकर के काम के तमिल में अनुवाद के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की तथा कोयम्बटूर और मदुरई में मेट्रो रेल परियोजनाओं की भी घोषणा की। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान भारत में गरीबी और असमानता बढ़ने का दावा सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ये दावे विभिन्न सर्वे पर आधारित हैं, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने एक शोध पत्र में ये भी कहा है कि वास्तव में कोविड के दौरान देश में ग्रामीण और शहरी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर असमानता कम हुई है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पनगड़िया और इंटरलिंक एडवाइजर्स के विशाल मोरे ने मिलकर भारत में गरीबी और असमानता कोविड के पहले और बाद में शीर्षक से ये शोध पत्र लिखा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में भारतीय आर्थिक नीति पर आयोजित आगामी सम्मेलन में इस शोध पत्र को पेश किया जाएगा। वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में आई उथल पुथल को रोकने के उद्देश्य से विश्व की एक प्रमुख वित्तीय कंपनी UBS स्विट्जरलैंड के संकटग्रस्त बैंक क्रेडिट स्विस को लगभग 3.25 अरब डॉलर में खरीदेगी। इस घोषणा के बाद क्रेडिट स्विस का शेयर 63% और UBS का शेयर 14% टूट गया। क्रेडिट स्विस ने बृहस्पतिवार को कहा था कि वो अपने शेयरों के गिरने के बाद स्विस सेंट्रल बैंक से 54 अरब डॉलर तक का कर्ज लेगा। हालांकि इससे भी बैंक के ग्राहक और निवेशक आश्वस्त नहीं हुए। इसके बाद स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने यूबीएस से संकटग्रस्त बैंक का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बर्सेत ने कहा कि ये सौदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा क्रेडिट स्विस का अनियंत्रित तरीके से पतन देश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता। स्विट्जरलैंड के 7 सदस्यीय संचालन निकाय ने एक आपात अध्यादेश जारी किया है जिसमें शेयरधारकों की मंजूरी के बगैर बैंक के विलय को मंजूरी दी गई है। क्रेडिट स्विस के चेयरमैन एक्सेल लेहमान ने इस सौदे को एक बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।